बहते रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। आज संडे है, बाबा के अव्यक्त महावाक्य 1986 फरवरी 27 की मुरली है। रूहानी सेना कल्प कल्प के विजयी। बाबा ने हम सब बच्चों को अनेक प्रकार के टाइटलों से सुशोभित किया है। संसार का ऐसा कोई मर्तबा नहीं हुआ जिससे हमको अटैच ना किया हो, चाहे वो सेना है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता है, किसी भी पोजीशन से संबंध रखता है। बड़े ऊंचे से ऊंचे पोजीशन के साथ हमको जोड़ा है। उनका कर्तव्य क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, तो ये जो मुरली है, इस मुरली में दो पार्ट में मुरली है। एक तो मुरलियों से चुने हुए अव्यक्त महावाक्य हैं, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। उस प्योरिटी की पर्सनैलिटी से क्या क्या फायदा होता है और कैसे वो पर्सनैलिटी हमारे में आएगी, उसको देने वाला कौन है, वो डेवलप कैसे होगी, उसकी बहुत सारी बातें, निशानियां क्या हैं उसकी, अगर वो हमारे जीवन में है वो भी बातें बताई हैं। और जो पहला पार्ट है मुरली का, कल्प कल्प के जो विजयी है रूहानी सेना, तो उसके बारे में बाबा ने बताया है कि तुम्हारे कल्प कल्प विजय क्यों है और उसका क्या यादगार है और उसके विजय की निशानी क्या है। विशेष रूप से जो मुरली है ये विदेशी डबल फॉरनर्स, अफ्रीका वाले, कुछ यूके वाले भी होंगे लेकिन अधिकतर अफ्रीका, नैरोबी, गुजराती जो यहाँ से गए हुए हैं उनको बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, कुछ उनके ऊपर फोकस किया है। जो बच्चे विशेष सेवा के निमित्त बने उनकी महिमा की है। हैं जी, अन्य धर्मों में जो चले गए हैं, भले वो यहाँ से दूर चले गए लेकिन फिर भी बाप ने उनको पकड़ लिया, सेवा के लिए गए, वो भी इसमें जिक्र किया है। और श्रेष्ठ सेवा कौन सी है वो बाबा ने बताया है। और जो वहाँ का वायुमंडल कैसा है, उस वायुमंडल में सेवा करना, इसके भी बाबा ने ऑफरिंग दी है उनको। और बीच में एक इशारा भी दिया है, एवर रेडी रहने का इशारा, तो हमको कैसे एवर रेडी रहना है वो भी बताया है। कि बाबा का अगर इशारा मिले तो बच्चे अब रेडी हो, आ सकते हो, कोई सोच तो नहीं चलेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी है। तो हम विशेष देखेंगे कि हमको इस मुरली से क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले तो बाबा ने जो कहा कि रूहानी सेना जो है कल्प कल्प की विजयी है और इसका बच्चों को नशा है, तो कल्प कल्प के हम विजेता रहे हैं। क्यों विजेता रहे हैं, क्यों विजयी हैं, क्यों कल्प कल्प हमारे विजयी, क्योंकि स्वयं साथी हमारा जो कौन है, चीफ कमांडर कौन है, परसों की तीन दिन पहले साकार मूल्य में था, कोई चीफ कमांडर है, कोई कमांडर है, कोई जनरल है, कोई लेफ्टिनेंट है, तो ये भी एक रूहानी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। इस रूहानी सेना का चीफ कमांडर कौन है, स्वयं सुप्रीम सोल, स्वयं परमात्मा है, इसलिए विजय निश्चित है। इसमें बाबा ने कहा संसार में विजय की गारंटी नहीं होती, जो दूसरी सेना होती है कोई पक्का निश्चित नहीं है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ गारंटी है कि तुम्हारी विजय निश्चित है, इसलिए तुम लोगों को नशा रहता है और निश्चिंत भी हो जाते हैं। तो देखेंगे संसार की जो सेना है उसको कितना भाग दौड़ करनी पड़ती है, कितना लंबे समय की ट्रेनिंग चलती है, कितने ऑब्स्टैकल विघ्न आते हैं उनको, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनको, अपना परिवार छोड़ के दूर दूर रहना पड़ता है, कई कई महीने कई कई मास दूर रहना पड़ता है, कितना प्रशिक्षण होता है उनका, कठिन से कठिन, और उस सेना में से कोई कोई छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन उस युद्ध से भी यहाँ का युद्ध और भी खतरनाक है, वो अदृश्य वो तो दिखाई दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन ये अदृश्य युद्ध है, वो शत्रु सारा दिखाई दे रहा है सामने, इन आंखों से दिखाई दे रहा है, यहाँ शत्रु जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ भीतर से शत्रु आते हैं। उस सेना में शत्रु बाहर से आक्रमण करते हैं, पता होता है किधर किधर से आक्रमण करना उनको, तो वो सारे रास्ते बंद करने की तैयारी करते हैं, स्थूल हथियार है, लेकिन यहाँ जो है सार सब सूक्ष्म रूप से है। हाँ, वो तो बम बार चलाते हैं, मिसाइलें चलाते हैं, युद्ध के टैंक होते हैं, तोपें होती हैं, यहाँ ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमारे पास है। तो जैसे वो सेना अस्त्र शस्त्र को पूरा अपडेट रखती है, समय समय पर उनका निरीक्षण करते हैं, उनको चलाते हैं, अगर वो रखे रखे रह जाए तो जंक लग जाएगा, खा जाएगा, फिर समय पर दुश्मन आएगा तो कार्य नहीं करेंगे। इसी तरह बाबा ने कहा कि मैंने तुम बच्चों को सारी शक्तियाँ दे दी हैं, आते सारी शक्तियाँ दे दी हैं, लेकिन हमने कहाँ रख दी हैं, ये हमको समय पर मिलती नहीं है, समय पर वो फाइलें मिलती नहीं है, तो जैसे होते हुए उनका कोई फायदा नहीं है। बैंक में पैसा जमा करके रखा है, अरबों रुपया है, लेकिन समय पर हमको याद ही नहीं आ रहा है कि कौन से बैंक में है, तो ढूंढ रहे हैं उसको, या ATM का जो पिन कोड है उसका भूल गए हैं, पासवर्ड ही भूल गए हैं, तो भी नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं हो तो भी नहीं चलेगा, सिग्नल नहीं हो तो भी नहीं होगा। तो यहाँ बड़ा सूक्ष्म रूप से सारी हमारी जो युद्ध चल रही है बड़ा सूक्ष्म रूप से है। तो बाबा ने कहा कि तुमको निश्चय के साथ ही नशा है, निश्चित है कि हमारी विजय निश्चित है, एक गारंटी है, संसार की सेना को गारंटी नहीं है, तो यह गारंटी है, और हमारे साथ स्वयं परमात्मा है, इसलिए हमको नशा है। और इस विजय की यादगार भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा दिखाइए, कौन कौन सी है यादगार भक्ति मार्ग में, एक तो पांडव सेना, एक तो उनके साथ जो श्री कृष्ण का भी दिखाते हैं, यहाँ दूसरी दूसरी बातें भी बताई हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी दिखाते हैं, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, जीत किसकी हुई, पांडवों की, भले वो उनके तरफ अक्षौणी सेना थी लेकिन पांडवों की तरफ स्वयं श्री कृष्ण था, इसलिए जीत उनकी निश्चित थी। तो भक्ति मार्ग में यादगार है। बाबा ने कहा उन्होंने तो हिंसा की युद्ध दिखा दिया है, लेकिन तुम्हारा है अहिंसा की युद्ध, उधर राम और रावण का युद्ध है, इधर बीच में बच्चे भी साथ में है, तो रूहानी सेना और जिस्मानी सेना, यहाँ रूहानी सेना है और वहां जिस्मानी सेना है, वहां हिंसा है यहाँ अहिंसक है, इसलिए तुम डबल अहिंसक हो। और क्या यादगार है, एक विजय माला का यादगार है, और एक यादगार है एक और यादगार है, कौन सा? अंगद का। हाँ, वो अंगद का भी है। और इस मुरली में एक और यादगार बताया, प्रीत बुद्धि निश्चय विजयंती, जो प्रभु प्रीत बुद्धि हैं उनकी विजय निश्चित है, विपरीत बुद्धि विनिश्चयंती कहा जाता है। तो ये भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की यादगारें हैं जो हमने इस समय बाबा के साथ रहकर इस युद्ध को जीता है, जो अदृश्य युद्ध है, जो हमारा अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो ये विजय हमारी इसकी यादगार है। और बाबा ने कहा तुम्हारी विजय हुई पड़ी है क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी विजय है तो क्या कहेंगे? पहले से हुई पड़ी है, सोचने की बात ही नहीं है इसमें। तो विजय तो हमारी निश्चित है, कल्प कल्प के हम विजयी हैं। ये तो केवल रिपीट कर रहे हैं। हाँ, पिछले साल भी हुई थी, अभी भी हुई है। पिछले कल भी हुई थी, अभी भी हुई है। तो हमारी विजय निश्चित है, इसलिए हम निश्चिंत अवस्था में हैं। तो देखो, हम कोई अगर ये भी याद रहे कि विजय हमारी निश्चित है ही, तो भी माया अनेक रूप से आएगी, रायल रूप से आएगी, लेकिन हमारे पर आक्रमण नहीं करेगी। अगर वो आक्रमण करेगी तो अगर हम कोई स्मृति में रहते तो हम उससे उभर जाएंगे, वो किनारा कर लेगी अपने आप। तो ये विजय के बारे में बातें थी, तीन बातें। एक तो बाबा कहते तुम बच्चों को विजय का नशा है कि तुम कल्प कल्प के विजय हो। क्यों नशा है? क्योंकि गारंटी है कि हमारी कल्प कल्प में विजय है। संसार में उस सेना को कोई गारंटी नहीं है, यहां तुम बच्चों को गारंटी है। और दूसरा, भक्ति मार्ग में विजय का यादगार दिखाया जो कि तुम बच्चों का है। उन्होंने क्या दिखाया और तुम क्या करते हो, उसकी यादगार है। और तीसरा, विजय तो तुम्हारी हुई पड़ी है। संसार में अगर आपसे कोई पूछे तो बाबा कहते पूछने की बात नहीं है, विजय तो हमारी निश्चित हुई पड़ी है। तो ये विजय के ऊपर थी बात। फिर बाबा ने जो अफ्रीका वाले सामने बैठे थे, तो बाबा ने कहा भले अफ्रीका में गए हैं, है ना, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो तो आपका सेवा स्थान है, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है, वो तो हमारा दफ्तर है, सेवा का स्थान है, सेवा केंद्र है, तो वहां हम गए हैं सेवा के लिए। लेकिन परमानेंट एड्रेस अगर स्मृति में, बुद्धि में रहेगा कि हमारा मधुबन है, तो क्या होगा? दो बातें हो जाएंगी। हाँ, एक तो वहां के जो सेवा स्थान है या जो सेवा साथी हैं, तो वहां हमारी अटैचमेंट नहीं होगी, लगाव नहीं होगा। हमारा लगाव कहाँ रहेगा? घर में। जैसे संसार में अगर कोई भी नौकरी करता है लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? घर में ही रहता है, परिवार की तरफ ही रहता है, क्योंकि उसको पता मैं परिवार के लिए कमाई कर रहा हूँ, अपना घर खड़ा करने के लिए कर रहा हूँ। तो बुद्धि भले उसकी दफ्तर में है, लेकिन फिर भी अधिकतर तो सूक्ष्म रूप से घर ही रहती है। शाम का वक्त होता है तो रिटर्न जर्नी, उसको पता वापस लौटना है। तो बाबा ने कहा वो तो तुम्हारा सेवा स्थान है, वापस तो तुमको मधुबनी आना है, ये घर है। और दूसरा घर कहाँ है? बाबा ने कहा परम धाम। अगर ये भी स्मृति में रहे तो तुम बच्चे ऊपर हम रहेंगे। तो ये हमारे दो घर हैं, परमानेंट एड्रेस हमारा मधुबन है। चाहे हम कहीं भी रहते हैं, किसी स्थान पर भी रहते हैं, अगर हमको ये भी स्मृति रहे कि हमारा असली घर मधुबन है, ये तो हम सेवा केंद्र हैं, सेवा स्थान पर हैं, हमारा असली घर मधुबन परम धाम है, तो भी हम डिटैच ऊपर हम रहेंगे। तो अनेक प्रकार की युक्तियां बाबा बताते हैं हम सबको उपराम रहने के लिए। और चौथी पांचवी बात बाबा ने बताई कि सेवा का बल मिलता है। उन जो बच्चे ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन लोगों का आहार विहार भी कैसा है, बाबा ने कहा कुछ भी खा पी लेते हैं वो, है? वातावरण कैसा है? अशुद्ध वातावरण है, क्योंकि उस देश में अधिकतर जब भी आप न्यूज़ सुनेंगे या सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ आपराधिक रूप से उनको होता है। हाँ जी, गरीबी बहुत है वहाँ, इसलिए कोई असामाजिक तत्व तो ऐसे भी होते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। उसके लिए एक बार शायद जगदीश भाई भी एक बार गए थे कहीं, तो उनको भी पकड़ लिया था निगरों ने कहीं, तो डांस करके छूटे थे वो, एक उनका ऐसा एग्जाम्पल है। तो कहीं निगरों की चपेट में आ गए, मर जगदीश भाई जी आओ छूटेंगे कैसे, तो बोला मैं इंडियन डांस करके दिखाता हूँ। तो हाँ, डांस के चक्कर में अंदर ही अंदर मन की तैयारी करते रहे, रास्ते देखे किधर से भागना है, जैसे क्रिकेटर ग्राउंड में देखता है किधर चक्का स्टॉप का चक्का लगाना है, इस तरह हमारे जगदीश भाई जी भी डांस करते करते उनसे भाग छूटे। तो वो ऐसा देश है कि लूटपाट की घटनाएं अनेक प्रकार की होती रहती हैं क्योंकि वहां गरीबी बहुत है। तो ऐसे स्थान पर बच्चे गए हैं, सेवा कर रहे हैं ऐसे अशुद्ध वायुमंडल में, तो बाबा कहते ऐसी सेवा का बल मिलता है बच्चों को। बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाप की मदद स्वतः मिलती है जब वो ऐसी हिम्मत रख के उस सेवा के क्षेत्र के सेवा के मैदान में उतरते हैं और निश्चिंत होकर सेवा कर रहे हैं। हालांकि उनको पता उस माहौल का वो कैसा माहौल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि विजय तो हमारी निश्चित हुई पड़ी है। उस सेवा के मैदान में उतरकर किसी तरह से भी हार तो हो ही नहीं सकती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सेवा का बल मिलता है। और अधिकतर वहां गुजराती हैं, तो बाबा ने गुजरातियों के विशेष संस्कार बताए। कौन से? गरबा करने के, आपस में एकमत होकर गरबा करने के, चाहे छोटा भाई हो चाहे मोटा भाई हो। तो जब गरबे का टाइम आता है तो सब इकट्ठे होते हैं, एक एक दस दस को भी ले आएगा घर से, एक आदमी चलेगा तो सब को ले आएगा घर से। तो उसी तरह बाबा कहते तुम सेवा के मैदान में जाते तो एक एक दस दस को ले आता है, जो भी रत्न छिपे हुए हैं उनको निकाल के ले आता है। तो गुजरातियों के विशेष संस्कार है, आपस में गरबा डांस करने के जैसे वो संस्कार हैं, वही संस्कारों को इस सेवा में लगा रहे हैं, इसलिए भी सेवा में सफलता है, इसलिए भी सेवा में बल मिलता है। तो गुजरातियों के विशेष रूप से संस्कार है। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवा कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ सेवा कौन सी है? उसी माहौल को देख के बाबा ने कहा हुआ है कि वहां जो भय का माहौल है, जो लोग भय में जी रहे हैं उनको खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। भले उस कंट्री वे के लोग हैं लेकिन वो भी भय के माहौल में जी रहे क्योंकि वातावरण ही ऐसा है, तो उनको खुशी दिलाना श्रेष्ठ सेवा ही है। आज भी संसार में क्या है, भय का माहौल ज्यादातर वही है, फ्यूचर का फियर है, उस भय के भय में जी रहे हैं। कुछ दिन था ना पहले साकार मुरली में अव्यक्त वाणी में था कि भय के साय में जी रहे हैं, मौत के साय में जी रहे हैं, भय की शैया पर जी रहे हैं। तो आज वही माहौल चल रहा है, तो ऐसे माहौल में किसी के भय को खत्म करके उसको निर्भय बना देना कितनी बड़ी सेवा है। तो इस सेवा से बाबा कितनी खुशी मिलती है, उनको भी खुशी मिलेगी और तुम बच्चों को खुशी मिलेगी, क्योंकि उन लोगों का आहार विहार कैसा है, वायुमंडल कैसा है वहां, उस वायुमंडल में भय के वायुमंडल में उनको निर्भय बनाना, खुश बनाना, तो ये श्रेष्ठ सेवा है। तो ये थी। फिर एक गुजरातियों की विशेषता बताई बाबा ने, वो तो संस्कार थे और गुजरातियों की एक विशेषता कौन सी? जी रास करनी, तो रास तो पहले कर लिए, भी रास के बाद क्या करेंगे भी, बोला संगठन भी हो गया। तो बाबा ने कहा तन मन धन से बाप का बनाने में लगे हुए हैं, अपने पूरे तन मन धन से बाप के सहयोगी बनकर जो रत्न छिपे हुए हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। और एक बाबा ने एक बात कही कि उस पलिहारी से एक आत्मा की है, जिस आत्मा ने यहां से इंडिया से, उसमें शायद वेदांती वैन शिलु बन गए शायद अफ्रीका में, तो वहां जो भाई उनके लेके गया दयाल भाई थे शायद, वो दयाल भाई या दया काका कुछ ऐसा नाम था उनका, तो वो उनको लेके गए थे बॉम्बे से। तो उस माहौल में लेके गए और उस एक आत्मा के कारण बाबा कहते इतने छिपे हुए रत्न निकल के आए। हाँ वो गुप्त हो गया, वो छिप गया रत्न और तुम बच्चे प्रत्यक्ष हो गए, वो शरीर छोड़ दिया होगा, तो मेरे ख्याल छोड़ दिया शायद तभी। तो बाबा ने कहा वो छिप गया और तुम बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। तो उस बलिहारी एक आत्मा के, तो मैंने एक आत्मा भी कितनी बड़ी सेवा करती है, बाबा का बच्चा कोई कैसा भी है लेकिन एक आत्मा भी, बाबा ने उस दिन कहा ना क्लास में, अगर एक महायोगी भी निकल जाए तो वो अनेकों को बना देगा। जानकी दादी के बारे में बाबा ने कहा कि तुमको प्रजा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो राजाएं तैयार करो, राजा आगे प्रजा अपने आप ही बनाएगी। तो उसे एक आत्मा के कारण कितनी बड़ी सेवा होगी, तो कुछ साधारण आत्मा थोड़ी जो जिनको लेकर गई हो अफ्रीका में। तो एक एक आत्मा के, इसलिए बाबा ने कदमों में पद्म समाये हुए हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। तो बलिहारी उसे एक आत्मा की है। और फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे डायरेक्शन प्रमाण सेवा करते हो, इसलिए न्यारे और प्यारे रहते हो, उसमें अटैचमेंट नहीं है उस सेवा में। जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं लोग, दूसरे जाति प्रजाति में चले गए हैं, तो दूसरी भाषाओं में चले गए हैं, दूसरे कल्चर में चले गए हैं, दूसरी संस्कृति में चले गए हैं, उनको निकाल के बाप के बनाना ये विशेषता है, और ये विशेषता तब फलीभूत होती है भाव ने कहा जब तुम बाप समान न्यारे प्यारे बनकर सेवा करते हो, तो बाप समान न्यारे और प्यारे बनने की विशेषता है। और साथ में बाबा ने यह भी कहा कि तुम बच्चों को साथ में एवरेडी भी रहना है, अगर बाप तुमको इशारा दे दे कि अब ये सेवा स्थान छोड़कर दूसरे पर जाओ तो एवरेडी हो। और बाबा ने कहा इसकी डेट नहीं बताएंगे, अचानक होगा ये, तो अचानक में कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थान से उस सेवा से भी बाबा कैसे डिटैच करने की युक्ति बता रहे हैं। और एक बार किया भी था इंडिया में, अपना टीचर मैंने को चेंज कर दिया था बहुत। तो उसी तरह से बाबा जहां भी हम सेवा करते तो बाबा उस सेवा से भी हमारी अटैचमेंट ना हो जाए, क्योंकि सेवा के विसार में जाने से सार छिप जाता है, और अंत में क्या होगा, हमको सार में स्थित होना है, वो समेटना है सारा। और जब तक हमने समेटा नहीं है तब तक हमारी बुद्धि की तारें जुड़ी रहेंगी, वहां उनको खींचेंगी, चाहे वो अलौकिक सेवा कर रहे हैं चाहे वो लौकिक सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमको समेटना भी है, अपने सार स्वरूप में स्थित होना है, तो एवरडी रहना है। तो एवरडी रहने के लिए बड़े लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए, चाहे हमारा देह भी है या सेवा स्थान है या सेवा साथी हैं या लौकिक में जो मकान है घर है प्रॉपर्टी है जमीन जायदाद धन संपत्ति जो भी है, उन सबसे डिटैच रहना पड़ेगा, सब समेटना पड़ेगा। ये सब समेटा होगा तो ही हम उड़ान भर सकेंगे, नहीं तो अंतमते सोगति हो जाएगी। तो ये भी बात ही एवरडी। फिर बाबा ने ऑफरिंग दी है, किसको ऑफरिंग दी है वो फिर उस वहाँ वही बातें रिपीट की है कि देखो वहाँ अफ्रीका में बीआईपी सेवा भी कर रहे हैं, अनेक वर्गों की सेवा कर रहे हैं उस वायुमंडल में माहौल में, लेकिन उन पर के बच्चे बाबा के बन जाते तो कितनी बड़ी सेवा हो रही। तो ऐसी सेवा करने वालों को भी बाबा विशेष ऑफरिंग देते हैं, ऑफरिंग माना शाबाशी शाबाशी, ऑफर नहीं, ऑफर तो कहेंगे तो सिर्फ पेशकश हो जाती है एक, मैं आपको ऑफर करता हूँ कोई चीज़, हाँ चांस देना, ऑफरिंग माना शाबाशी कहेंगे उसको। तो हाँ जी प्रोत्साहन यशोदिन दे प्रोत्साहन देते हैं, तो बाबा ऑफरिंग भी देते बच्चों को। तो ये मुरली में सारी बातें थी, अनेक प्रकार की बातें। हाँ एक मुख्य बात से ये भी थी साथ में कि स्वर्ग तो भारत बनेगा, वहां तो क्या बनेगा पिकनिक स्थान बनेंगे। तो ये भी था कि भारत अविनाशी खंड है, भारत स्वर्ग बनेगा, सबको वापस भी इधर ही आना है, लेकिन वहां पिकनिक करने जाएंगे। कैसे जाएंगे पिकनिक करने, विमान से, कौन से विमान, सुपरसोनिक विमान के बारे में बाबा ने बताया था, एक सेकंड में वहां पहुंच जाएगा, आवाज से भी तेज। इस संसार में जो विमान सबसे फास्ट है वो सुपरसोनिक होता है, आवाज की गति से चलता है। हाँ बाबा ने फोन का एग्जाम्पल दिया था, टेलीफोन से जब बाबा बच्चे आप बात करते हैं इस यहाँ से वहां बात पहुंच जाती है, लेकिन कई बार टेलीफोन से भी लेट पहुंचता है आजकल, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसे भी होता है तो भी लेट होता है। तो वहां तो सब स्वचालित ऑटोमेटिकली होगा। तो ये भी बात थी कि वहां सब पिकनिक स्थान बन जाएंगे। और क्या कहा मुरली में, हाँ बीच में बाबा ने कहा उनको हम खुद जगे हैं तो उनको जगाएंगे, कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण तो बाबा ने कहा है ही है, बन नहीं जाते, बाबा ने कहा कुंभकर्ण तो है ही है, वो तो खाया पिया, और बाबा ने कहा कुछ भी खा पी लेते हैं, कुछ भी माना जैसे चाइना में कुछ भी खा पी लेते हैं, कीड़े मकोड़े कैसे देखो संस्कृति आ गई है, कुछ भी खा पी लेते, वंडरफुल है। लेकिन क्या है जब इंसान को भूख लगती है तो देखता नहीं है, पेट कुछ देखता नहीं है, इसलिए वहां गरीबी बहुत है, तो इसलिए कुछ भी खा पी लेते बेचारे। तो बाबा कहते हैं उनको कुंभकर्णों को बार बार जगाते रहो, नहीं तो सोचते हैं फिर बाद में पूछते हैं सुना था, हाँ सुना था, ध्यान नहीं दिया, भूल गए। तो बाबा ने कहा उनको बार बार जगाते रहो, मिट्टी की रोटी बनाते। अच्छा देखिए मिट्टी के बिस्किट के, तो कैसे कैसे क्या हालत होगी संसार की, अपने भारत जैसा कहीं नहीं है, तो कैसे कैसे देखो बाबा को इसलिए आना पड़ता है उन आत्मा को उद्धार करने के लिए। और क्या कहा, और मुरली में दूसरा पार्ट तो है ही है पीछे के मुरली में, और फिर सो जाते हैं कुंभकर्णों को थोड़ा जगाते हैं, फिर इसलिए बार बार उनको जगाते रहो, नींद का नशा है। और क्या कहा इसमें, हाँ परिवार बाप दादा परिवार को गुलदस्ते के रूप में देखते हैं, अनेक धर्मों में की बात ही कन्वर्ट हो गए तो सभी गुलदस्ते में ये बाबा के जो है खुशी उदार फूल बन गए हैं। तो ये मुरली थी, तो इसमें सारी जो बातें बताई कि एक तो कल्प कल्प के विजयी हैं, इसका नशा हमको रखना है क्यों, और नशा भी तब रहेगा, ऐसा नहीं खाली स्मृति में रहने से, स्मृति तो समर्थ बनाएगी लेकिन साथ साथ में हमको उसके नशे में स्थित रहने के लिए हमको युद्ध के मैदान में कुछ करना भी तो पड़ेगा, जो भी अस्त्र शस्त्र उनको धार लगानी पड़ेगी, तो ये भी हमको साथ में रखना है कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र दे, ज्ञान के जो इतने अस्त्र शस्त्र हैं उनको रोज हमको देखना है, उनको उपयोग में लाना, नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। और भक्ति मार्ग में उसकी यादगार बाबा ने बताई, और कल्प कल्प की तुम्हारी विजय हुई पड़ी है, संसार वाले पूछें तो आप उनको बताओ, कि सोचने की इसमें बात ही नहीं है, निश्चित है विजय। फिर बाबा ने परमानेंट एड्रेस की बात की है कि परमानेंट एड्रेस तुम्हारा कौन है, कहाँ है, मधुबन है और परमधाम मुरली, हाँ अगर ज्ञान गंगा, हाँ ज्ञान गंगा की सेवा का जो बल मिलता है यहाँ, वो वाली बात ही कि हर एक ज्ञान गंगा बन गया है, तो ज्ञान गंगा में अनेक आत्में आकर स्नान कर रही हैं, अपना भाग्य बना रही हैं, ये भी बात थी बीच में। और एक थी गुजरातियों के विशेष संस्कार कौन से हैं, गरबा रास करते हैं, इसलिए एक दस दस को ले आता है, गुजरातियों की विशेषता बताई कि तन मन धन से बाप को कैसे बाप की सेवा में मदद कर रहे हैं, हिमते बच्चे मध्य बाप, वो वाली बात है। फिर सेवा का जो बल मिलता है कैसे मिलता है वो बताया, कैसे कैसे धरनी में है, और श्रेष्ठ सेवा कौन सी है, जो भयभीत आत्माएं हैं उनको खुशी कर खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। और फिर बताया कि एवरेडी भी रहना है, फिर डायरेक्शन प्रमाण न्यारे प्यारे बनकर जो सेवा करते हैं तो उसकी भी उसके कारण बाप को प्रिय है ना। और फिर आफरीन, बच्चों को आफरीन, आफरीन ही आफरीन है, किन बच्चों को, जो ऐसे माहौल में भी जाकर भी अपना सेवा कर रहे हैं, VIP सेवा भी कर रहे हैं, दूसरी आत्माओं की भी सेवा कर रहे हैं। तो ये मुरली थी सारी। अब दूसरा जो पार्ट है वो है प्योरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर है, जैसे पिछले संडे को डबल लाइट के ऊपर था, चुने हुए महावाक्य थे दूसरा पार्ट, इसी तरह इस मुरली में भी चुने हुए महावाक्य हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी के। तो इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी से क्या क्या होता है वो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो सबसे पहले तो बताया प्योरिटी की पर्सनैलिटी, तुम आत्मा नंबर वन हो, क्यों क्यों हो, सबसे बड़ी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, क्यों, क्योंकि तुमको प्योरिटी की पर्सनैलिटी तुम्हारी किसने बनाई है, स्वयं ऊंचे से ऊंचे बाप ने बनाई है प्योरिटी की पर्सनैलिटी, परमात्मा ने बनाई है। तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ऊंची है, और बाबा ने कहा संकल्प और स्वप्न में भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी कायम रहे, यहां तक फिर कोई इसका अटेंशन नहीं करना है, और ये है तो सेवा स्वतः होगी, सेवा के पीछे भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहा जाता पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो आत्मा क्या चाहती है, सुख और शांति, तो सुख शांति तभी मिलेगी जब हम प्योरिटी को पूरी तरह से अमल में लाएंगे। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो हमारी सेवाओं को स्वतः बढ़ाएगी, सेवा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सेवा स्वतः हमारे पीछे आएगी, परछाई की तरह आएगी, जो पिछले रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा उस मुरली में था, सेवा पीछे आएगी अपने आप। तो ये था प्योरिटी की पर्सनैलिटी में नंबर वन। फिर बाबा ने यहाँ एक एग्जांपल दिया, जब सेवा के क्षेत्र में जाते हो तो चेहरा का कैसा होना चाहिए, चेयरफुल और केयरफुल भी। अगर चेहरे के वैसे हमारे 12 बजे हुए तो कौन सामने आएगा, इनको क्या मिला है पूछे वो तो अर्थात उसके लिए बाबा ने कहा चेयरफुल केयरफुल कैसे रहेगा, तो दो तीन बातें बताई, कौन सी, वो तब रहेगा जब सदा प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखेंगे, तो हमको हमारे पास जो प्राप्तियां हैं वो हमको याद है तभी तो खुशी रहेगी ना, अगर प्राप्तियां हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है तो खुशी कैसे रहेगी। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखो, फॉलो फादर करो, तो चेहरा चेयरफुल भी रहेगा और केयरफुल भी रहेगा, तो भी सेवा स्वतः होती जाएगी, तो उससे क्या होगा फिर प्रसन्नता होगी चेहरे पर, और प्रसन्नता से वो आकर्षण होंगे। तो ये दूसरी बात थी कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो के साथ साथ ये है चेयरफुल और केयरफुल रहे। फिर नेक्स्ट क्या कहा बाबा ने, बहुत सारी बातें हैं, जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी उतनी सेवा स्वतः होगी, सेवा में सफलता होगी, रूहानियत आएगी। यहां बाबा ने एग्जाम्पल भी था ब्रह्मा बाबा का कि कैसे पर्सनैलिटी आकर्षित करती थी, सब्जी भी काटते थे और साधारण कर्तव्य भी करते थे, लेकिन आकर्षण क्यों था, क्योंकि प्योरिटी, क्योंकि बाबा को पूरा अपने फ्यूचर के बारे में, एक तो है स्वयं भगवान के ऊपर निश्चय, लेकिन हमको अपने फ्यूचर के बारे में पूरा निश्चय होना चाहिए, क्या में वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, इसलिए दादी रतमोणी जी हमेशा के ऊपर कहती थी, योग में बैठते हो चेहरे पर खुशी नहीं आती किसी पर, अरे बोला मुस्कुरा के बैठा करो, स्वर की खुशी स्वर को याद करो, देवते ऐसे थोड़े बैठे होंगे, तो चेहरे पर खुशी हो, प्रसन्नता हो। तो तीसरी ये बात थी कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी आकर्षित कर दूसरों को, सर प्राप्तियों की लिस्ट सदा सामने रखो, हमेशा बुद्धि में वो रहनी चाहिए, क्या क्या हमको मिला है। जैसे हम विस्मृत होते हैं तो चेहरे के हमारी हाव भाव भी बदल जाते हैं। हाँ, वो प्राप्तियों की माला जपते हैं तब चेहरा ऐसे होता है। और एक्चुअली योग को हमको हल्के से लेना है, गंभीरता तो रखनी है, लाइट होके करना है। जैसे बताया ना राजकुशल जी मैंने कि सुंदर विचारों के साथ योग करना है, नहीं तो क्या होता है भारी क्यों जाता है। नींद गाने का मुख्य कारण है कि हमारा चिंतन नहीं चलता, विचार नहीं चलते हैं। तो हमको रिफ्रेश होके, हल्के होके और बड़े लाइट मूड में बैठना है, उसको नए तरीके से क्रिएटिव। स्वर के बारे में सोचो, हम कैसे थे, हमारे में कौन सी विशेषताएं थी, कौन सी क्वालिटीज थी, और अभी सोचो हमको अगर प्राप्तियां हैं तो कौन कौन सी प्राप्ति मिली है। मूड बदलनी नहीं चाहिए, हाँ उसमें कहा मूड बदलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें एक और बात की, कारण को निवारण में परिवर्तन करो, कारण को पकड़ के नहीं बैठ जाओ। भाई समस्या तो आएंगी आएंगी, लेकिन हमको उनसे घबराना नहीं है। समस्याओं का समाधान करने के लिए बाबा ने हमको अनेक प्रकार के मेथड बताए हैं, हैं जी, उन समस्याओं को समोसा बना दो। हाँ, और समस्या क्या है, चीटी समान है, कागज का शेर है। अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं बड़ी नहीं है, जो बाबा ने पहले नशा दे दो, कल्प कल्प के तुम विजयी हो, तो हमारे विजय निश्चित है। लेकिन उन समस्याओं के समय उनका समाधान करने का चिंतन करें। समस्या आ गई उसके प्रति हम सोचते रहें, उसमें अधिकतर यही होता है, जब समस्याएं अनेक प्रकार की परिस्थितियां मुसीबतें आती हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को कहीं ना कहीं ढीला कर देते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं। मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां आ रही हैं उनको आने दो, हम अपनी स्थिति को ना बिगाड़े। तो ये जो तीसरी बात थी, हाँ एक किसके लिए, चेहरे से भरपूरता दिखाई देगी, उनके नजदीक जाना अच्छा लगता है, उससे बातें करना अच्छा लगता है। जो प्रसन्नचित आत्मा होगी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न प्रसन्नचित आत्मा के पास में जाना अच्छा लगेगा, उनका चेहरा अच्छा होगा, उनसे बात करना अच्छा लगेगा। तो ये वाली बातें भी थी। तो एक प्योरिटी के कारण ही कितना सारा बड़ा मैल खड़ा जाता है सेवा का। वो तीन आगे आएगी, एक संसार की बाबा ने तुलना की है कि संसार की जो महान आत्माएं होती हैं संसार में भी, वो भी अपना क्या क्या ध्यान रखती हैं, अपनी एनर्जी में संकल्प वेस्ट नहीं करते हैं वो, उनको पता होता है हमारे बड़े बड़े कर्तव्य हैं। आज संसार में जो बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं तो उनका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो उन्होंने जीवन में बहुत सारी असफलताएं भी झेली हैं, ऐसा नहीं है कि फट से ऊपर पहुंच गए वो, लेकिन उन असफलताओं से उन्होंने सीखा है। वहां जो उन्होंने असफलता के पीछे भी एनर्जी लगाया, संकल्प लगाया, अपना टाइम लगाया, वो जाया नहीं गया, बल्कि उनसे सीख के उन समस्याओं को पार करके वो और निखर गए, उनमें निखार आ गए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो बाबा ने कहा हमारा जो कर्तव्य बहुत बड़ा कर्तव्य है। कितने बार, 47 बार। तो हाँ 10,000 बार जो एडिशन अलवा एडिशन, तो बल्लभ कर हाँ लैब जल गया। तो संसार में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कभी हार नहीं खाई, जो किंग ब्रूस एंड स्पाइडर, एक कहानी आती थी किंग ब्रूस एंड स्पाइडर, हार मानी नहीं उन्होंने, खाई मानी नहीं है, जुनून पैसा सफलता माना, कुछ करने का ये था, करने की तमन्ना। तो वो मकड़ी की कहानी भी हमको पढ़ाई जाती थी, तो कैसे मकड़ी चढ़ती है फिर उतर जाती है। एक वो है हरिवंश राय बच्चन की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, बार बार फिसलती है गिरती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये अनेक प्रकार के संसारिक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो हम हमारे सामने अगर समस्याएं किसी भी प्रकार की आती है, स्थूल सूक्ष्म से मन की तन की, उनको हम दरकिनार करने के बजाय उनका हम अध्ययन करें अच्छी तरह कि कहाँ मेरे में वो कमजोरी आ रही है, क्यों हमको हमारा मन चिंतन नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारा चिंतन तो चलता है, ऐसी बात नहीं चिंतन नहीं चलता है, लेकिन दूसरी बातों का चिंतन हमारी बुद्धि पर हावी है, इसलिए सुंदर विचारों का उधर उत्पत्ति होती नहीं है। हाँ जी, सुंदर विचारों का अकाल पड़ गया है। तो ये है कि सुंदर विचारों के साथ हमको मेडिटेशन करना है। हाँ, लेकिन तुम 63 जन्म तक नामी ग्रामी हो, तुम्हारी जो पूजा होती है पूजने बनते हो, उन पूजने नहीं बनते हैं वो, तो तुम इतने नामी ग्रामी हो। और क्या बताया इसमें? हाँ, हमारा लक्ष्य हो कि प्रसन्न चित्त नहीं बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। क्वेश्चन मार्क नहीं कि प्रश्नों के भंवर जाल में हम अपने जीवन को ऐसे बिता दें। समाधान सो बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। और क्या बताया? हाँ, एक और बात थी उसमें, सबसे पहले इसमें प्योरिटी की पर्सनैलिटी से, कि जितनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो उतना तुम अपनी नजरों से निहाल कर सकेंगे किसी को। यह है नजरों से निहाल करने की सेवा। हमारी नजरें, हमारी जो दृष्टि में परिवर्तन आता है मेडिटेशन से आता है, हमारे विचारों से आता है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन अर्थात हमारे विचारों का एक दर्पण है सामने। जो हमारे अंदर विचार हैं वो मेडिटेशन में हमारे चेहरे से परिलक्षित होते हैं। दृष्टि, हाँ, सब में अलौकिकता है। दृष्टि, वृत्ति, बोल, सब में अलौकिकता हो, ये भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वालों की निशानियां हैं। हाँ, रूहानी पर्सनैलिटी वाले विश्व की नंबर वन आत्माएं, साधारण नहीं है। हम अरे गहरे नत्थु गहरे नहीं है, विशेष आत्माएं हैं। तो ये स्मृतियां अगर हमको जब रहती हैं तो नेचुरली हमारी जागृत अवस्था हो जाती है। क्यों हम धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं? तो उसका कारण ये है कि हम पढ़ते लिखते तो हैं लेकिन उसको बार बार अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। योग में बैठे बैठे याद करो, पिछले संडे मुरली में क्या था, उससे पहले क्या था, याद करो ताकि वो हमारे में आ जाए। पिछले संडे क्या था बताओ? बाबा जापान वालों से मिले थे, इसी बार अफ्रीका वाले, पिछले बार जापान वालों से मिले थे। उड़ती कला चढ़ती कला, पिछले कला उड़ती कला सर्वगा वाला, पिछले संडे विदेशियों से मुलाकात थी, एशिया ग्रुप का था वो। बाबा ने कहा एशिया भारत के नजदीक ही है, भारतीय एशिया में, लेकिन बाबा की रमणीकता है। तो ये क्योंकि बच्चे खुश कैसे होंगे? कोई बच्चे सोच रहे होंगे बाबा बुद्धू, उसको पता नहीं है कि एशिया भारत में बोला वाला बाबा बोला नाथ। तो ये सारी रमणीक बातें बाबा को बच्चों को खुश करने का तरीका है। भोलेनाथ रहते हैं, फिर बालानाथ भी हो जाते हैं, लास्ट में बाला भी लगाएंगे। तो ये वाली बात थी। और क्या था प्योरिटी की पर्सनैलिटी में? हाँ, जो भरपूर आत्माएं होंगी हैं वो संतुष्ट तो रहेंगी, भरपूरता अर्थ संतुष्टता, और ना केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी संतुष्ट करेंगी वो। हाँ, संसार की जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं उनसे आकर्षित नहीं होगी, हद में नहीं जाएगी, सदा बेहद में रहेगी, संतुष्ट रहेगी, प्रसन्न रहेगी, सदा सफलता मूर्त रहेगी, सेवा स्वतः होती रहेगी, नंबर वन होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल सब में अलौकिकता होगी। ये सारी कितनी सारी बातें हैं ये। हाँ, संसार की पर्सनैलिटी वाले सिर्फ उनका गायन होता है, महिमा होती है, लेकिन तुम्हारी तो पूजा होती है। 63 जन पूजनीय बनते हो, तुम पूजनीय बनते हो, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही है। हाँ, ये भी एक बात थी, जैसे हाँ गहरा संबंध है, जैसे पवित्रता का है ऐसे ही अपवित्रता का अगर एक भी विकार आ जाए तो उसके साथ पूरा का पूरा कुनबा परिवार उसका आ जाता है साथ में। तो ये भी हमको अटेंशन रखनी है। तो सुख शांति की जननी है, हाँ, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, फाउंडेशन, और ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है ये, और ये तुम्हारा श्वास है, ऑक्सीजन है ये। अगर ये ही नहीं है तो सारा मैल तो जैसे एक रेत के ढेर पर खड़ा तुरंत कभी भी गिर सकता है। हमारे ब्राह्मण जीवन का उन्नति का एकमात्र जो मुख्य साधन है, अगर ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे, वो है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो बाबा ने कहा इतने ऊंचा बड़े थे बड़ा बाप ने तुमको प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न बनाया है। हाँ, जहां ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी संपन्न है वहां दिमाग आराम में रहेगा, सुख चैन में रहेगा, सुख चैन में रहेगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। कल एक बहुत अच्छा सेंटेंस गोपी बहन जो क्लास कराया कि मधुबन की जो भूमि है त्याग की भूमि है ये, और वो भूमि त्याग मांगती है। अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो बेचैनी होती है, क्योंकि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान के अनुकूल जो सेवा होनी चाहिए वो हम नहीं की तो हम विचारों से बेचैन हो जाएंगे, अंदर बेचैनी रहेगी। तो बेचैनी का मुख्य कारण ये तपस्या की भूमि है, त्याग की भूमि है, बलिदान की भूमि है, चरित्र भूमि है। जैसे ब्रह्मा ने इस भूमि को बना के रखा, अगर वैसे हमने इस भूमि को बनाने में कोई अवज्ञा की, अवहेलना की, उल्लंघन किया, श्रीमत की पालना नहीं की, तो हमको बेचैनी रहेगी। तो बेचैनी का मुख्य कारण है कि जिस धारा पर हम रहते हैं उसी धारा के अनुकूल हमको चलना है। हाँ, अगर कोई गलती होती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, गलती होगी तो रियलाइज होगा और उनको सुधारने के लिए हमको ताकत देगा, बाबा शक्ति देगा, तो उससे हम ऊपर जाएंगे, उस बातों को पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि उससे सीख के हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ, दुनिया में दो प्रकार की रूहानी, वो जिस्मानी पर्सनैलिटी, लेकिन हाँ, एक शारीरिक पर्सनैलिटी है, दूसरी है पोजिशन की, और यहाँ तुम्हारे पास है रूहानी पर्सनैलिटी है। वो दो प्रकार की पोजीशन की, एक तो शरीर की करते हैं, अपने शरीर को मनाते हैं, उनका शारीरिक बल बलिष्ठता जिसको कहा जाता है, उसके लिए जिम में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो पर्सनैलिटी अपनी दिखाते हैं शारीरिक रूप से, जिस्मानी पर्सनैलिटी है। और दूसरी है पोजीशन की, मर्तबे की, और हमारी कितनी ऊंची पर्सनैलिटी है, देवकुल की महान आत्माएं हैं जिनके आगे पूरा संसार झुक रहा है। वो देवकुल की महान आत्माएं हैं जो हम पूरे संसार की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, शुभ वाली, अशुभ वाली नहीं। तो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है हमको बाबा ने बनाया। हाँ, उनका केवल एक महिमा अगर होती है तो एक जन्म के लिए अच्छा है। फिर एक बार मुरली बाबा ने भी कहा था, अगर वो आत्मा है तो उनकी बूत लगा देते हैं प्रतिमा बाहर चौराहे पर, और उन पर कुछ भी कोई भी करता रहता है। बाबा ने डिटेल से नहीं बताया था, लेकिन बाबा ने कुछ भी कोई भी करता रहता है, ऊपर से कुछ बिछता है, कुछ भी पड़ता रहता है। लेकिन हमारे जो देव देवताओं के ऐसे चौराहे पर थोड़ी होती है, अगर हाँ ऊपर शत्रु होता है पुष्प विमान। हाँ, तो हमारे विधि पूर्वक मंदिर बनते हैं, पूजा होती है, अगर चौराहे पर कहीं मंदिर भी बनता है तो फिर भी थोड़ा उसको शत होती है, कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं करते हैं, महल टाइप का मंदिर बनता है। अब दो दिन बाबा ने बिरला को याद किया था, बिरला के मंदिर बनते हैं। हाँ, लाखों ऊंट, ये पहली बार सुना होगा लाखों ऊंट वाली बात, पहले सुना नहीं हमने कभी। मुरली बाबा ने कहा लाखों ऊंट भी आए तब भी सोना नहीं खत्म होगा, वो कितनी बड़ी बात है। पीछे आया था एक बार छोटा वीडियो क्लिप, सोनभद्र यूपी में, तो वहां बोला 12 लाख करोड़ का सोना है वहां, तो बकायदा रिसर्च कर रहे हैं पूरे, तो होगा ही होगा। तो जहां भी अपना संपत्ति से अखूट है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति कहां, 22,000 टन सोना भारत में, तो हम तो सोने से भी ऊपर है। उम्र इसमें क्या है, स्वयं सोने का खान, हम खुद ही खान बन गया सोने की। तो ये सारी बहुत सारी बातें थी मुरली में, तो द्वारा से समराइज शॉर्ट में कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बाबा ने हम सबको कल्प कल्प के हम विजयी हैं इसका नशा रखना है हमेशा, विजय की गारंटी है। स्वयं निश्चित क्यों गारंटी है, क्योंकि स्वयं भगवान ने गारंटी निश्चित की हुई, विजय निश्चित की हुई है। दूसरा, इसके संसार में क्या क्या यादगारें हैं और हमारी क्या यादगार है इस कल्प, इस संगम युग में, वो हमको देखना है। और तीसरा, विजय तो हमारी हुई पड़ी है, इस पर कोई आशंका वाली बात ही नहीं है, कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और चौथा, मधुबन आप हमारा परमानेंट एड्रेस है, कहीं भी किसी भी स्थान पर रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस है हमारा मधुबन। और दूसरा, परमधाम। और पांचवी बात, कि सेवा का बल मिलता है, कब मिलता है, जब हम हिम्मत करके ऐसे वैसे वातावरण में भी सेवा करते रहते हैं, तो बाबा हमको उसमें मदद करता है। और नेक्स्ट, अगली बात थी गुजरातियों के संस्कार, बाबा ने बताया कि चाहे छोटा हो मोटा हो गड़बड़ रास करते हैं, एक एक दस दस को ले आता है। फिर नेक्स्ट है, सबसे श्रेष्ठ सेवा है कि भय वाले माहौल में भी खुशी क्रिएट कर देना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। और नेक्स्ट है गुजरातियों की विशेषता, कौन सी विशेषता है, जो तन मन धन से बाप के ऊपर बलिहार गए, अनेकों को बाप का बना रहे हैं। और नेक्स्ट है, बलिहारी उसे एक आत्मा की है, जिसने अनेक आत्माओं को जो छिपे हुए रत्न हैं उनका भी भाग्य बनाया, खुद छिप गया और वो दूसरे प्रत्यक्ष हो गए, ये बात थी। फिर एवरेडी रहने के लिए बाबा ने कहा कि एवरेडी रहना भले वो सेवा के क्षेत्र में है, लेकिन अटैचमेंट वहां नहीं होनी चाहिए। अगर बाप इशारा करे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में एवरेडी बुलाने पर तुरंत चले आएंगे, तो इतना एवरेडी रहना है, कोई याद नहीं आए, चाहे कोई लौकिक रिश्तेदार है, कोई भी धन संपत्ति कुछ भी याद नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई, बाल बच्चे कोई भी याद नहीं आए। और नेक्स्ट लास्ट में ऑफरिंग ही ऑफरिंग मिलती है बाबा की उन बच्चों को जो ऐसे माहौल पर रहते हैं, जो आहार विहार उनका कैसा है, कुछ भी खा पी लेते हैं, कुंभकर्ण की तरह नींद में सोए हुए हैं या ऐसा अशुद्ध वातावरण है, ऐसे वातावरण में भी अनेक प्रकार के वर्गों की सेवा करना, VIP की सेवा करना, तो ऐसे बच्चों को बाबा विशेष रूप से ऑफरिंग देते रहते हैं। फिर प्योरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर था, प्योरिटी की पर्सनैलिटी के अर्थात स्वयं भगवान ने तुमको प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न बनाया है, ऊंचे तो ऊंचा बाप, ये हमको नशा रखना है। अगर ये नशा रहेगा तो तुम दूसरों को नजरों से निहाल करते रहेंगे, तो सेवा स्वतः होती रहेगी और फिर खुशी कायम रहेगी। दूसरा प्योरिटी की पर्सनैलिटी होगी तो बाबा ने कहा उसके लिए आप प्राप्तियों की लिस्ट को सदा सामने रखो, फॉलो फादर करो, जैसे ब्रह्मा बाप के प्रति सब आकर्षित क्यों होते थे, क्योंकि प्योरिटी की पर्सनैलिटी में नंबर वन थे। तो तुम बच्चों की ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी भी नंबर वन है, तो यह याद रखना है। अगर यह याद है तो दिल आराम से रहेगा, सुख चैन में रहेगा। नेक्स्ट प्योरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात सदा संतुष्ट आत्मे, तृप्त आत्मे, जो संतुष्ट आत्मे हैं, खुश रहती हैं, उमंग उत्साह में रहती हैं, उनके पास आने के लिए सभी आतुर होते हैं। इनके पास जाना अच्छा लगता है, इनकी बात सुनना अच्छा लगता है, इनके पास बैठना अच्छा लगता है, उनके चेहरे की भरपूरता से सेवा स्वतः होगी। नेक्स्ट जो ऐसी नामी ग्रामी प्योरिटी पर्सनैलिटी वाली आत्मा है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी सेवा में संलग्न, क्योंकि उनको पता है हमारे बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हैं, तो अपना वेस्ट कुछ नहीं करेगा। उनकी दृष्टि वृत्ति कृति सब में अलौकिकता दिखेगी, सब में अलौकिकता, और चेहरा सदा चेयरफुल और केयरफुल भी हो, सावधान भी हो और चेयरफुल भी हो। और हाँ जी, और एक वरदान में बताया बाबा ने कि शिव शक्ति बनकर कंबाइंड रहना बाबा, उस कंबाइंड रहने से क्या क्या फायदे होते हैं वो उसमें विस्तार है। और श्लोक में था पावरफुल वृत्ति द्वारा सेवा करनी है। तो ये सारी मुरली थी आज की मुरली। तो बार बार हम कोई देखते रहना है, जो हम कहते हैं सोचते हैं कि एक पन्ने पर मोटे मोटे पॉइंट लिख लेने और बार बार उनको रिवाइज करना है ना, और उसमें क्या होगा फिर पिछली मुरली हमको पूरी मुरली पढ़नी नहीं पड़ेगी। जैसे हम उन पॉइंट पर एक नजर दौड़ाएंगे तो सारी मुरली धीरे धीरे याद आ जाएगी, और इसके बिना हमारा जीवन नीरस बन जाएगा अगर हम ये नहीं करेंगे तो। क्योंकि बाबा ने कहा तुम रॉयल स्टूडेंट हो, परसों की साकार मुरली में था, रॉयल स्टूडेंट के बच्चे हो, रॉयल स्टूडेंट हो। हाँ, मुरली और मधुबनी याद आ जाता है, हाँ ये भी मुरली में था। अच्छा, ओम शांति।
पवित्र बन, पवित्र बन माँ भारती पुकारती, पवित्र बन, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था, पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अवतारे जिनकी आरती, भक्त मंदिरों में अवतारे जिनकी आरती। पवित्र बन, पवित्र बन माँ भारती पुकारती, पवित्र बन, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती, पवित्र बन, पवित्र बन माँ भारती पुकारती।